ओम शांति। आप सबको होली की बहुत 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 मुबारक हो। हम सभी इससे पहले कि होली के ऊपर सच्ची होली मनाएं, वो होली कैसे मनानी चाहिए और हमें अभी हम मनाएंगे, है ना, अगले एक घंटा हम होली ही मनाएंगे, सच्ची होली कैसे मनाएं, उससे पहले हम दोबारा से फिर दो मिनट सभी साइलेंस में जाके बाबा के पास चलें, मन बुद्धि को एकाग्र करें, एकदम ऐसी स्थिति में बैठें, एकाग्र चित्त होकर के बैठें, ताकि बाबा से जैसे हम सूक्ष्म वतन में सब चले जाएं। आज तो बाबा वहां सबसे होली मना रहा है ना, तो वहीं पर जाके मनाएं सभी, इसलिए सभी चलें दो मिनट, फिर दोबारा से व्हाइट लाइट में ही चलिए, बिना गीत के ही हम चलें और ऊपर जाकर के बाबा से थोड़ा मिलन बना के आए, और फिर हम बाबा जो हमें टच करें फिर हम उसको चिंतन करें, है ना। चलिए सभी बुद्धि को सब तरफ से समेट लें, मन बुद्धि को सब तरफ समेट के एक मीठे बाबा की यादों में खो जाएं। ओम शांति। अभी परसों ही हम सब ने बाबा से सम्मुख होली मनाई, और ऐसा लग रहा था जब बाबा आए थे तो ऐसे लग रहा था सागर, आप सबने फील किया कि कैसे सागर हमारी तरफ, हमें कैसे लहरों में, लहरों से, अपनी लहरों से नहला रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा था सभी को जब बाबा से, बाबा में इतना प्यार उमड़ा तो बाबा स्टेज छोड़ के सामने भी आ गए, है ना। तो होली से, होली शब्द का मतलब तो बाबा ने हमें बहुत बार बार बताया है, होली शब्द के तीन अर्थ सभी जानते हैं, जस्ट रिवाइज करें एक बार। होली माना, पहला होली माना होली माना बीत चुकी, ये बात हम बार बार सुन चुके, किंतु इसको वैज्ञानिक विधि से कैसे होली करें, इसके पीछे कैसे हम, हमारे अंदर क्यों बार बार वो बातें फिर बार बार लौट के आ जाती हैं, बहुत बार होली करते हैं किंतु फिर लौट करके वापस हमें प्रभावित करते हैं, है ना। तो आज हम उसको हम बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से समझ के, है ना, इसमें साइलेंस और साइंस के मिश्रण से समझते हुए उसको हम सचमुच में आज उसकी होली सदा के लिए मना दें। तो पहला अर्थ होली का मतलब होली मीन्स पास्ट इज पास्ट, जो बीत चुका उसको हम भूल जाएं, सदा के लिए समाप्त कर दें, सदा के लिए जला दें। दूसरी बात, होली माना पवित्र, होली माना पवित्र, होली फिर पवित्र बन जाए, और तीसरी बात होली माना फिर मनाना, है ना, रंग लगाना, तरंगों में सराबोर हो जाना। तो आज हम आपसे अभी इन्हीं बातों को नंबर वाइज, पहले हम लेते हैं होली, अर्थात पुराने संस्कारों को जला देना। अब ये जो पुराने संस्कार क्या चीज हैं और क्यों बार बार हमें तंग करते हैं, उसकी हम आज गहराई में पहले जाएं कि क्या क्या पुराने संस्कार, जो बाबा ने कहा जिनको हम मेरा संस्कार कह देते हैं, जिनको हम, बाबा ने कहा उसका जो आज ब्राह्मणों में जो विशेष रूप कौन सा है, आलस्य और अलबेलापन का रूप है। तो वो क्या चीज है और कैसे है, उसकी हम गहराई में जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं मुख्य पांच विकार हैं रावण के, पांच कौन से विकार हैं पांच मुख्य, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह और अहंकार। ये जो पांच विकार हैं मुख्य, ये हमें किस किस तरह से, इसकी हम डिफरेंट रूपों की व्याख्या भी कर लें कि किस तरह से हमारे अंदर आना शुरू करते हैं और कहां कहां किस स्टेज में हमारे पास आए हैं और वो हमारे अंदर किस रूप में अभी हैं, ताकि उनको पहचान के, परख के हम निकाल सके और सदा के लिए जला सके। दृढ़ता से, बाबा ने कहा दृढ़ता से, ऐसे जैसा दृढ़ संकल्प की विधि हम अपनाएं कि वो सदा के लिए खत्म हो जाए। जैसे पांच विकार जो मुख्य है, जैसे काम विकार है, उसके दो मुख्य रूप हैं, जो एक तो काम विकार तो स्थूल में, जो आज बाबा ने जो सुबह मुरली चलाई उस मुरली में बाबा ने कहा काम विकार माना, कल की मुरली में भी था, गिरा माना अपने आप को शूट कर देना, है ना, खत्म कर देना। और आज भी बाबा ने का काम महाशत्रु है ना, इसको कई अपना मित्र समझ लेते हैं कि तो मित्र नहीं है, क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके जो मुख्य रूप ब्राह्मणों को जो असर करते हैं वो है आलस्य और अलबेलापन। काम विकार के दो बच्चे कह सकते हैं, वो क्या है, आलस्य और अलबेलापन। और आलस्य और अलबेलापन से फिर काम विकार पैदा हो जाता है, तो बाप से बच्चे और बच्चे से बाप फिर पैदा हो जाता है, दो अंश हैं इनके। अब अगर ब्राह्मणों की दिनचर्या में, अगर ब्राह्मण अपनी दिनचर्या में जरा भी आलस्य करें, सुबह अमृत वेले उठने में, मुरली सुनने में, मुरली में जाने में, या दिन में अटेंशन रखने में, या शाम को चार्ट भरने में, सोने से पहले 10-15 मिनट बाबा की याद में बैठने में, बिना याद करे ही सो गए, बिना चार्ट भरे ही सो गए, तो क्या होगा, स्वप्न में क्या आएंगे, 20 साल पुरानी बातें, 30 साल पुरानी बातें भी स्वप्न में आएंगे। अगर जरा भी कहीं भी हमने आलस्य किया, सारी दिनचर्या जो ब्राह्मणों की दिनचर्या है उसमें कहीं भी जरा थोड़ा सूक्ष्म भी हम आलस्य करते हैं उसको फॉलो करने में, तो हमारे अंदर काम विकार के संस्कार पुराने वाले, हमें ज्ञान में चलते 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल, तो भी वो पुरानी बातें सूक्ष्म में कहीं ना कहीं संबंध में, संपर्क में कहीं ना कहीं जरूर आ जाती है, और रात में स्वप्न में आ जाती है। तो ब्राह्मणों का जो, ब्राह्मणों का हर क्षण नया है, हर सेकंड नया है, हर श्वास नई है, नए में आलस्य नहीं होना चाहिए। नए में आलस्य होता है क्या, छोटा बच्चे में आलस्य होता है क्या, कितनी छोटा बच्चा कितनी हरकतें करता है ना, इतना बच्चे इतना बड़े कर सकते हैं क्या? तो जब नए हैं, हमारा हर श्वास नया है, बाबा हमारे साथ सदा है, तो आलस्य किस बात का होना चाहिए। तो जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में कभी भी आलस्य ना करें, सूक्ष्मते सूक्ष्म अति सूक्ष्म आलस्य भी ना करें। 4 बजे उठना है तो उठना ही है, दृढ़ता से उठना है, भले आप 2 बजे सो रात में, पर 4 बजे फिर उठना ही है। कई बार मैं जैसे जो लौकिक जो बाबा ने जो मुझे सेवा दी है वो हॉस्पिटल की सेवा दी है, और उसमें भी हार्ट के पेशेंट्स की ज्यादा सेवा होती है। रात को 2 बजे भी हार्ट अटैक्स होते हैं, 12 बजे भी हार्ट अटैक्स होते हैं, तो कई बार रात को 2-2 बजे सोना होता है, किंतु कभी भी ऐसा कभी नहीं होता कि 4 बजे हम सोते रह जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है पिछले 23-24 साल में। कुछ भी हो, कैसे भी हो, बाबा से जो समय अपॉइंटमेंट फिक्स है उस समय उठना ही है। और अमृत वेले का जो अर्थ है वो है आनंद स्वरूप स्थिति। कैसी स्थिति, आनंद स्वरूप स्थिति। अगर आनंद की स्थिति नहीं आई तो हमने अमृत वेला किया ही नहीं। और आनंद की स्थिति भी कोई 5 मिनट 10 मिनट नहीं, पूरा आधा घंटा। कितनी देर, आधा घंटा। साइंस के जो रिसर्च हुई है उसमें बड़ा क्लियर बताया गया है, अगर आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में बैठ जाते सुबह, आनंद की स्थिति अचीव कर लेते आधा घंटे के लिए, तो आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स फ्लड के रूप में यहां से निकलते, एकदम हार्मनी में निकलते, और सारी शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, एक एक सेल में बीमारी होती है, कोशिकाओं में पॉइजन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे के सारे फ्लश हो जाते, वॉश हो जाते, और अगले 24 घंटे के लिए आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती, फूल जैसी हो जाती। इसलिए अमृत वेला करने के बाद जिसने पावरफुल अमृत वेला किया उसको नींद नहीं आ सकती है, वो सो नहीं सकता है। कई कहते हैं अमृत वेला करके आधा घंटा करके सो जाएं हम, वो सो ही नहीं सकता है, इतना उमंग उत्साह भर जाता है अंदर से, वो सो ही नहीं सकता है। तो आलस्य जो है का नामो निशान अगले 24 घंटे में रह ही नहीं सकता है। और जिसका पावरफुल अमृत वेला होगा उसको मुरली सुनता है तो मुरली उसके अंदर चातरक बन के सुनता है। जैसे सीप कहते हैं, सीप का मुंह खुला होता है तो पानी की बूंद गिरते क्या बन जाते हैं, वो मोती। जैसी बाबा की मुरली अंदर जाती वो रतन मन के अंदर समा जाते दिमाग में, है ना, ऐसी स्थिति बन जाती। तो ब्राह्मणों का सबसे पहला जो है वो क्या है, ये जो आलस्य है ये काम विकार का सूक्ष्म अंश है। कभी भी आलस्य ब्राह्मण जीवन में और आलस्य, ब्राह्मण जीवन और आलस्य दो शब्द इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। और अलबेलापन, अलबेलापन माना कहीं भी पवित्रता में जो मर्यादाएं हैं हमारी, ब्राह्मण जीवन के चार नियम हैं और चार मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, और अमृत वेला झुटके वाला नहीं, कौन सा वाला, आनंद की स्थिति वाला, आधा घंटा आनंद की स्थिति वाला, आनंद में खो जाने वाला, लवलीन, जो आज का वरदान था, परमात्म लव में लवलीन हो जाने वाला, सुदबुद्ध ना रहे, वो अमृत वेला। तो पहला नियम अमृत वेला, दूसरा मुरली, जो कभी भी अमृत मुरली क्लास मिस ना करे, ये दूसरा नियम है ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का। तीसरा नियम, जो हर आधे घंटे में या एक घंटे में बार 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 बार, जो बाबा ने कल कहा फरिश्ता रूप की ड्रेस पहनने वाला, ठीक है, अभी बाबा ये ब्राह्मणों के अपडेट होता है ना, जैसे कहते हैं ना हमारे जर्नल्स आते हैं ना, हर महीने हमारा नया जर्नल आता है, कार्डियोलॉजी का भी जर्नल आता है, मेडिसिन का भी जर्नल आता है, तो बाबा भी हमारा हर 15 दिन में नया जर्नल, नई मुरली आती है ना 15 दिन में, बाबा नई मुरली हमें देते हैं, नए डायरेक्शन देते हैं, नए लक्ष्य देते हैं। तो अभी बाबा ने क्या लक्ष्य दिया परसों क्या लक्ष्य दिया, कि हमें क्या लक्ष्य दिया, हर सारे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, बीच बीच में 3 मिनट क्या करो, फरिश्ता ड्रेस पहन लो। अभी हम उस पर चिंतन करेंगे, फरिश्ता ड्रेस कैसे पहननी है, उसकी विधि क्या हो, एकदम चुटकी में हम फरिश्ता ड्रेस पहन लें, ऐसी कैसे हम, वो क्या विधि होनी चाहिए। तो हर एक घंटे में, आधे घंटे में बार 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 कार्य करते करते भी फरिश्ता ड्रेस पहन के, और बाबा से क्या करें, बाबा ने कहा ना सात रंग के हीरों की, बाबा ने क्या किया, सात रंग के हीरे लिए और उनका फिर पाउडर बनाया, और पाउडर बना के क्या किया, वो फरिश्तों के ऊपर डाल दिया, तो क्या हो गई, सात रंग की ड्रेस बन गई, है ना। ऐसा फील करें, हर घंटे में फील करें कि बाबा से क्या फील करें, कि हमने फरिश्ते की पहले ड्रेस पहन ली और उसके बाद बाबा ने वो हीरे हमारे ऊपर छिड़क रहा है, हीरो का पाउडर, है ना, तो हमारी ड्रेस भी कैसी हो गई, इंद्रधनुष जैसी हमारी ड्रेस हो गई, है ना। वो फिर नशे में हम डांस करें, है ना, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, वो हर घंटे करें, वो है सच्चा ब्राह्मण। ये बाबा का फरमान है हमारे लिए, अगले जब तक बाबा 15 दिन में दोबारा आएंगे तब तक बाबा की डायरेक्शन है, बच्चे ये प्रैक्टिस करो, है ना, हर घंटे में प्रैक्टिस करो ये वाली, क्योंकि हमको फरिश्ता बनना ही है, और फरिश्ता बनने के बगैर देवता बन नहीं सकते हैं, ठीक बात है। तो ऐसी हम बार 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 ड्रिल करते रहे, जैसे बाबा ने हमें पहले कहा, कुछ साल पहले कहा था कि 5 स्वरूप की ड्रिल करो, 2001 में कहा था, 2001-2002 में कहा था, फिर वो ड्रिल करते करते इतने साल बीते, तो आज बाबा ने अभी नई ड्रिल हमको दी है, है ना, 8 साल अभ्यास के बाद बाबा ने एक नई ड्रिल हमको दी, फरिश्ता की ड्रिल करो, तो ये ड्रिल हम बार बार करें। चौथी बात, जो चौथा नियम जो ब्राह्मण जीवन का है, वो है शाम को सोने से पहले अपने दिन को ऑडिट करें, आज सारे दिन में मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम, क्या गलत काम मुझसे हुए, क्या गलत बोला, क्या गलत सोचा, क्या गलत देखा, क्या गलत सुना। कर्म माना, कर्म माना क्या होता, कर्म माना खाली कर्म करना हाथों से नहीं, ये सोचना भी कर्म है, है ना। अभी तो ब्राह्मणों की परिभाषा अलग है कर्म की, है ना, पहले सोचना, देखना भी, गलत देखना भी विकर्म है, गलत सुनना भी विकर्म है, गलत बोलना भी विकर्म है, गलत खाना भी विकर्म है, है ना, गलत खाना भी विकर्म है कि नहीं, है ना। तो जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनसे, किसी भी कर्मेंद्रिय से श्रीमत के खिलाफ कर्म करना विकर्म है, श्रीमत के अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ कर्म है, सुकर्म है। तो ये हम चेक करें, आज सारा दिन में मेरी स्थिति कैसी रही, जो बाबा ने डायरेक्शन दी उनके अनुसार, श्रीमत के अनुसार चला या श्रीमत के अलावा मनमत या परमत पर कोई मेरा कदम गया। तो ऐसी चार बातें वो करके फिर साथ में चार्ट भरने के बाद फिर बाबा की याद में 15 मिनट बैठो पावरफुल, और फिर सूक्ष्म वतन में जाके, हमारा जो बेडरूम कहां पर है, सूक्ष्म वतन, और बेड कौन सा है हमारा, कौन सा बेड है हमारा, हमारा बेड है बाबा की गोद, है ना। जो हमारा बेड है ना, जो कमरे में बेड होता है वो तो गैरेज है ना। शरीर क्या है, कार है ना हमारी, तो कार को कहां रखो, गैरेज में पार्क किया और कहां जाओ, कहां जाओ, अपने बेडरूम में, है ना। और अपने बेडरूम में कहां सोना है, जमीन पे नहीं, हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद। तो ये चार नियम हैं ब्राह्मणों के, इन चार नियमों में कहीं भी कोताही बरतना ये है आलस्य, ठीक है। और अलबेलापन क्या है, चार मर्यादाएं हैं, उन चार मर्यादाओं में कहीं भी ऊपर नीचे करना, मनमत या परमत का इस्तेमाल करना, वो है अलबेलापन। चार मर्यादाएं कौन सी हैं, पहली मर्यादा है पवित्रता, ब्राह्मण वो जो मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क से और स्वपन तक भी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी हो। ब्रह्मचारी माना जिसकी दृष्टि, जैसे ब्रह्म में आत्मा एक दूसरे को देखती है ना, ब्रह्म तत्व में रह करके ऐसे एक दूसरे को देखे, वो है ब्रह्मचारी, अर्थात एक दूसरे को आत्मा ही देखे, आत्मा भाई भाई की, जो आज की मुरली में भी था, आत्मा भाई भाई के रूप की दृष्टि अपना ले, चमकता हुआ सितारा ही देखे और शरीर की तरफ नजर ना जाए। तो पहली, और ब्रह्माचारी माना जो बाबा ने किया, जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया, जैसी परिस्थितियां बाबा के सामने, अगर मेरी परिस्थिति, मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है तो मैं वो वैसे वैसे ही एक्शन में आऊं जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जो सेम परिस्थिति आई तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे इसको फेस किया। जितना ब्रह्मा बाबा ने फेस किया उतना किसी ने फेस नहीं किया, हर परिस्थिति ब्रह्मा बाबा के सामने आई थी, हमारी दादियों के सामने आती हैं, वो कैसे फेस करती हैं। हमने तो यहां जब से मधुबन में आया था रोज देखा, दादी, बड़ी दादी को भी देखा, दादी जानकी जी को भी देखा और दादियों को भी देखा, कैसे वो सदा निर्माण्ड है, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सामने, कैसे वो निर्माण्ड है कि हर चीज को फेस करती हैं। कभी चेहरे पे कोई आवेश का भाव, कोई चिंता का भाव, कभी कभी सूक्ष्म में भी नहीं दिखाई देता है, सदा मुस्कुराते रहते हैं। जब वो ऐसे साकार में रहते कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बाबा ने क्या कहा मुझे, हर बच्चा कैसा है, हर बच्चा प्यारा है कि नहीं? बाबा ने कहा मेरे को हर बच्चा बहुत, सब बच्चे कैसे हैं, अति प्यारे, अति लाडले और सिकिलरे बच्चे, है ना। बाबा को हर एक बच्चा एक से एक अधिक प्यारा है। तो इसमें, ब्रह्मचारी में और ब्रह्माचारी में कहीं भी कोताही बरतना यह है अलबेलापन। कोई बोल श्रीमत के खिलाफ निकल गया, किसी ने कुछ, कोई कुछ भी बोले, कोई गलानी करे, कोई निंदा करे, कोई इंसल्ट करे, कितना भी कुछ मर्जी करे, बाबा ने क्या किया था ऐसी स्थिति में? क्या बाबा ने कभी किसी के सामने उल्टे शब्द बोले थे? जो मैं उल्टे शब्द बोलूं, जो बाबा ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं? जो बाबा ने किया मुझे वो करना है, तो वो है पवित्रता। व्यर्थ संकल्प भी आना अपवित्रता है, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। जब हमारी ऐसी स्थिति बने तो है सच्ची पवित्रता। यह है सच्चा पहला अटेंशन। अलबेलापन का उल्टा क्या होता है, अटेंशन। अगर यह अटेंशन रखे तो अलबेलापन कभी आए नहीं। फिर शुद्ध अन्न, है ना, शुद्ध अन्न की डेफिनेशन भी बहुत बड़ी है। दूसरी मर्यादा क्या है, शुद्ध अन्न की डेफिनेशन है कि शुद्ध अन्न माना खाली मुख से हम खाते हैं क्या, आंखों से भी तो खाते हैं ना, है ना? जो आंखों से देखते हैं वो भी तो हमारे अंदर जाके डिपॉजिट होता है ना। या तो कमजोरी पैदा करता है या शक्ति पैदा करता है। कानों से जो सुनते हैं वो भी तो हमारे, वो भी तो भोजन है ना आत्मा का, तो वो कुछ ये कुछ ऐसी बातें हम सुन लेते हैं जो आत्मा कमजोर करती हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो आत्मा को स्ट्रांग बनाती हैं। मुरली आत्मा को स्ट्रांग बनाती है ना, हमारी दादियों की क्लासेस हमारी आत्मा को स्ट्रांग बनाती हैं, है ना। किंतु ऐसी इधर उधर की बातें, मनमत की बातें, परमत की बातें, कुसंग की बातें आत्मा को कमजोर बना देती। तो शुद्ध अन्न बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, इसमें अलबेलापन करना, बोलते खाना खाते समय बोलना, खाना बनाते समय बातें करना, खाना बनाते समय कुछ और बातें सोचना, ये है भी अलबेलापन। तीसरा है सत्संग, तीसरी मर्यादा सत्संग। सत्संग माना एक सत्य बाप का निरंतर संग करना, उसके संग में ही रंगे रहना। बाबा ने कल कहा ना, तीन बार परसों कहा ना, कंपेनियन, कंपनी और कंबाइंड। कंपेनियन, बाप ही मेरा कंपेनियन है, बाप की ही कंपनी में रहना है, और बाप से निरंतर क्या करना है, कंबाइंड रहना है। पहले माया क्या करती है, पहले बाप से अलग करती है ना, बाप से अलग करके फिर क्या करती है, क्या करती है, फिर अपना रंग लगाती है, और फिर जब बाप से अलग हो जाते तो क्या होता, धीरे धीरे अंदर शुभ संकल्पों की शक्ति कम होती जाती, पावर कम होती जाती, और पावर कम होते होते फिर हमें, फिर हमारे जो बुरे संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, वो इमर्ज होते जाते, और फिर हम एकदम माया के मुरीद बन जाते। जो बाप से बांग्लादेश का बीच में एक अनाउंसमेंट है, बांग्लादेश के रूहीदास भाई शक्ति भवन में पहुंचे, दादी जी उनको याद कर रहे हैं। शक्ति भवन, बांग्लादेश के रूहीदास भाई शक्ति भवन में पहुंचे, दादी जी उन्हें याद कर रहे हैं। तो तीसरी बात समझे, सत्संग। सत्संग का एक बहुत सूक्ष्म रूप जो मैंने देखा, जो स्थूल रूप भी और सूक्ष्म रूप भी कह सकते हैं, वो है बाबा की मुरली, मुरलीधर की मुरली। अगर वो मुरलीधर की मुरली निरंतर हमारे अंदर समाई रहे तो भी सत्संग है। वो मुरली अंदर बार बार बजती रहे, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने कहा मैं कांटों को फूल बनाने आया, कांटों के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आया, तो यही बात अंदर बजती रहे बजती रहे बजती, ये भी सत्संग है। आज बाबा ने कहा लव में लवलीन रहो, परमात्म लव में लवलीन लवलीन रह करके हर कार्य करो, तो ये अंदर बजता रहे कि बाबा की लव में लवलीन हूं मैं, चेक करते रहे, तो ये भी सत्संग है। अब यही धंधा करना, बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हें यही धंधा करना है, यही ईश्वरीय धंधा करना है, ये अंदर बजता रहे, ये सत्संग है। मतलब मुरली भी दिन में कम से कम दिन में 8 बार तो कम से कम रिवाइज करनी चाहिए। कितनी बार रिवाइज करनी चाहिए, राजा बनने के लिए कम से कम, अगर हम राजा बनना है, राजा रानी बनना है, 16108 की माला में आना है, तो कम से कम कितनी बार रिवाइज करनी चाहिए, 8 बार रिवाइज। तो ये है अटेंशन। अगर इसमें अलबेलापन करते हैं हम, तो इसमें अगर अटेंशन नहीं रखते हैं, तो अलबेलापन है। और चौथा जो मर्यादा है वो है दैवी गुणों की धारणा, सत्यता। पहला दैवी गुण कौन सा है, सत्यता। अवगुण जब भी आए मन में, कोई भी अवगुण का अंश भी आए, तो उसको छोड़ के दैवी गुण को पकड़ लेना। कभी मन में क्रोध आए, कभी मन में कोई विकार, दूसरा कोई भी सूक्ष्म उसके चिंता आए, भय आए, शक अनुमान आए, किसी के ऊपर कोई जल्दीबाजी करने का दिल करे, ईर्ष्या का स्वभाव आए, उसको रोको, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, और लगा के दैवी गुण को धारण करो। क्योंकि अगर हमने गलत, अगर ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमें 100 गुना फल मिलता है, तो 100 गुना दंड भी मिलता है। अभी पहले थे हम छोटे छोटे मर्चेंट होते हैं ना, किराना मर्चेंट होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, आटा नमक बेचते हैं, टॉफी बेचते हैं ना। पहले हमारा वो वाला बिजनेस था सभी का, और अभी हमारा बिजनेस किसका है? किसी का बिजनेस है, हीरो का बिजनेस है ना। तो हीरो के बिजनेस में कमाई रोज लाखों की होती है, तो नुकसान भी किसका होगा? लाखों का होगा ना। अगर हम ठीक परख करके हीरे खरीदेंगे और हीरे बेचेंगे तो क्या होगा? लाखों की कमाई होगी। और अगर हमने परखने की शक्ति छोड़ करके अलबेलापन किया तो क्या होगा? लाखों का नुकसान होगा। तो अभी हमारा बिजनेस बदल चुका है ना, पुराना बिजनेस नहीं है। पुराना बिजनेस है क्या हमारा? अभी हम छोटे व्यापारी नहीं है। कौन से व्यापारी हैं? दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी हैं। सत्यता, पहला तो है सत्यता। सत्यता माना क्या? अपने ओरिजिनल, अनादि, आदि, अविनाशी, पावन सतो प्रधान स्थिति में स्थित होकर, पावन सतो प्रधान मतलब निराकारी स्थिति और देवता स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, वासोपन में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना, यह है सत्यता, आत्मा की सच्चाई। मेरी सच्चाई क्या है? पावन सतो प्रधान स्थिति, या तो चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम में, या सत्युग में प्रिंस या प्रिंसेस, लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म के बारे में जस्ट मैं सोच रहा था आज ही, क्या अहिंसा परम धर्म माना? काम विकार पर 100% संपूर्ण विजय। जैसे काम रूपी हिंसा को छोड़ा तो क्या हुआ? लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ा तो विश्व कल्याणकारी की सेवा का ताज आ गया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। जिसके पास क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, वो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहन ही नहीं सकता है। जिसने क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, अहंकार छोड़ा तो क्या होगा? छोड़ते ही क्या होगा? बाबा हमें क्या करेगा? विश्व कल्याण की सेवा का ताज दे देगा, सारे विश्व की सेवा की हमको ऑटोमेटिक जिम्मेवारी दे देगा। जैसे बाबा ने कहा ना, दादियों को बाबा इमर्ज करता है अमृत वेले, एडवांस पार्टी की आत्माएं जाती हैं, और कुछ हमारी प्रेजेंट जो दादियां हैं या हमारे ऐसे अनन्य भाई बहन हैं, अनन्य का मतलब खाली जिनके नाम है उनके नहीं, जो भी बाबा के बच्चे जहां भी रहते हैं, सेंटरों पर रहते हैं या ग्रस्त में रहते, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, सच्चे बच्चे हैं, बाबा उनको इमर्ज करता है अमृत वेले और उनको ड्यूटी देता है, बच्चे तुम्हारा आज ये ड्यूटी है, तुम वहां जाओ, तुम जैसे कमांडर होता है ना, आर्मी का कमांडर होता है, तुम वहां जाओ, 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 जो सच्चे बच्चे हैं। बाबा को ऐसे बच्चों की बहुत आवश्यकता है। सत्यता, बाबा के जो बच्चों की मुख्य विशेषता है वो क्या है? सत्यता। और सत्यता की डेफिनेशन बहुत गहरी, सत्यता कौन सी? जो अपने निराकारी और आदि स्वरूप में स्थित रहते हैं वो है सच्चे बच्चे। दूसरा पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता माना, निर्भयता का गुण जो है वो कैसा गुण? एक आंख में मुक्ति, एक आंख में परम धाम का सीन घूमता रहे, दूसरी आंख में सुखधाम का सीन घूमता रहे, इस दुनिया ये दुनिया का सीन ना घूमे, वो इस दुनिया में निर्भय रह सकता है। जिसकी आंखों में सदा परमधाम और सदा सुखधाम घूमता है, उसको इस दुनिया से कोई डर नहीं है। डर कोई डर नहीं हो सकता। फिर अंतर्मुखता। अंतर्मुखता माना, एक सेकंड में शरीर से डिटैच, मैं चमकती हुई आत्मा, बस यही फील होवे, मैं चमकती हुई आत्मा, लाइट का ताज, आंखों में आत्मिक दृष्टि, ऐसी स्थिति जब महसूस होवे तो है अंतर्मुखता, एकांतवासी। एकांतवासी में ना एक के अंत में स्थित हो जाना, ज्ञान के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, होते जाओ, है ना, शांति के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, प्रेम के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, आनंद के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, सर्वशक्तियों के सागर के अंत में स्थित हो जाओ, एकाग्रता उसमें ही टिक जाओ, मन बुद्धि एकदम वहीं चली जाए, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस हो जाओ, बस कोई रस नहीं और इसके अलावा, एक बाबा दूसरा ना कोई, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। लास्ट में चार जो दैवी गुण हैं वो ये हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। आज्ञाकारी माना बाबा की आज्ञा है, पवित्र भव, योगी भव। वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तन मन 100% बाबा के हवाले। ईमानदार माना बाबा से सदा सच्चे रहना, हर बात बाबा को जो आए जैसा है अंदर, मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा के सामने सदा सच्चे रहना, अपना पोता मेल हर समय बाबा के सामने रखते रहना, जो बात आए तुरंत बाबा को बताना, वो है ईमानदार। और फरमान बरदार माना बाबा का फरमान है, बच्चे अभी फरिश्ते रूप की ड्रिल करो, जल्दी जल्दी फरिश्ता बनो, पुराने को जला दो और नए को परमात्म संग के रंग में रहो। तो ये है ब्राह्मण की डेफिनेशन, राइट। तो आलस्य और अलबेलापन, यही आलस्य, इससे कहीं दूर जाना, चार नियमों से हटना आलस्य है, और चार मर्यादाओं में ऊपर नीचे करना अलबेलापन है। इनको पक्का अगर हम रखें तब हम हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और ऐसे जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ऐसे जो साफ दिल ब्राह्मण हैं, बाबा सदा उनके अंग संग है। बाबा ऐसे बच्चों को सदा याद करता है, बाबा को वो याद करने, उनको बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाबा उनको निरंतर याद रहता ही है, और बाबा ऐसे बच्चों को सदा याद करता है, अमृत वेले इमर्ज करता है, बच्चों को टच करता है, बच्चे वहां जाओ, बच्चे वहां जाओ, वहां जाओ। ऐसी स्थिति हमारी बननी चाहिए। तो मैंने बताया काम विकार के दो बच्चे ये हो गए ना, आलस्य अलबेलापन, क्रोध के दो बच्चे जो है दूसरों में दोष निकालने की आदत और बदला लेने की भावना, लोभ के दो बच्चे शक और अनुमान, मोह के दो बच्चे चिंता और भय, और अहंकार के दो बच्चे जल्दीबाजी करना, हर चीज में जल्दीबाजी, मैपन लाना, हर चीज में मैपन, हमेशा अपने आप को बिजी शो करना, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, जिसके अंदर ईगो होती है ना वो बहुत अपने आप को बिजी शो करता है, इजी नहीं होता वो। बाबा के बच्चे कभी बिजी नहीं होते, सदा इजी होते हैं। और ईर्ष्या, तो पहले जो बचपन से जब हम माता पिता, जो हमारे अंदर पुराने संस्कार कहां से आए, जब हम छोटे बच्चे थे ना, 2-3 साल के थे, तो माता पिता को देखते थे, माता पिता जो अपनी अपनी आदतों से खुद तंग थे, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, है ना, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल नेचर के कारण वो व्यवहार करते, हम उनको देखते थे और वो हमारे अंदर, वही व्यवहार हमारे अंदर स्टोर होता गया। 11 साल की उम्र तक उसको हम पैसिव फेज कहते हैं लाइफ की, ओरल फेज कहते हैं। हम माता पिता में, भाई बहनों में, अड़ोसी पड़ोसी में, स्कूल के टीचर्स में, अपने स्कूल के विद्यार्थियों में, साथ साथ में जो पढ़ने वाले बच्चों में जो बातें देखते हैं ना, वो हमारे अंदर अपने आप स्टोर हो जाती है। हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, वो हमारे अंदर गहरी बैठ जाती है और बैठ करके हमारी फिर 11 साल तक हमारी वो नेचर बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, जिसको हम कहने लगते हैं मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। वो लगता है वो मेरा नेचर है, बचपन से मेरे अंदर है, पर वो बचपन से मेरे अंदर नहीं था। जब मैं 4 साल का था मेरे वो स्वभाव नहीं था, 3 साल का था मेरा वो स्वभाव नहीं था, किंतु 3-4 साल की उम्र के बाद जो मैंने देखा माता पिता के अंदर, भाई बहनों के अंदर, उनका स्वभाव मेरे अंदर आ गया। और वो उनके अंदर कैसा स्वभाव था? रावण का स्वभाव था, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश वो आचरण करते थे और उनसे वो अपना काम निकालते थे, उनसे मैं प्रभावित होकर वो मेरे अंदर स्टोर हो गया। उसको मैं आज अपना मेरा स्वभाव संस्कार कहता हूं। जिनसे वो खुद परेशान थे वो बातें मेरे अंदर घुस गई। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र के बाद अब मैं उसी चश्मे से, जो चश्मा मेरे अंदर 11 साल की उम्र तक लग गया, उसी चश्मे से मैं दुनिया को देखना शुरू कर दिया। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें। ओम शांति। तो 11 वर्ष की उम्र तक जो कुछ मैंने अपने पेरेंट्स में देखा वही चश्मा मेरे ऊपर लग गया। मैंने अपने मां बाप से सुना, मां से सुना कि फला व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, इस तरह के व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, तो अब मैं उन व्यक्तियों को उसी नजर से देखने लगा। मैंने फादर को देखा, जब गुस्सा करते हैं हर काम उनका हो जाता है, तो मेरे को गुस्सा करने का मतलब कि हाँ, गुस्सा करने से हर काम हो जाता है, ये अंदर एक केमिकल बन गया ब्रेन में। तो जब फिर कोई कार्य 11 साल के बाद चाहिए करने के वास्ते, तो गुस्सा करके वो काम निकाल लिए। ऐसे ही लोभ की बात, ऐसे ही मोह की बात, ऐसे ही अहंकार की बात, जो जो देखी माता पिता में या भाई बहनों में या टीचर्स में, वो बातें अंदर अंदर क्या हो गया, वो केमिकल बन गए। और उन्हीं केमिकल के चश्मे में मैं देख जीवन को जीता रहा और वो संस्कार और पक्के होते चले गए। तो इस तरह से वो संस्कार पक्के होते 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 30-35 साल की उम्र तक उनको मैं क्या कहने लगा, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी आदत, जो मेरे नहीं है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर नहीं थे ये, वो अंदर बकायदा केमिकल बने हैं, स्टोर हुए हुए हैं केमिकल्स। और जब जैसी वो स्थिति आती है, सामने परिस्थिति आती है, वो केमिकल अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई फाइलें होती है ना, कंप्यूटर में डिफरेंट तरह की फाइल्स और सॉफ्टवेयर होते हैं, जब भी आपको वो कार्य करना हो वो फाइल अपने आप खुल जाती है, वो सॉफ्टवेयर यूज होने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक यूज होने लगता है, आपको उसके लिए बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपने आप यूज होता है। आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा था, आज 20 साल से वो व्यक्ति मेरे सामने आया नहीं है, किंतु 20 साल के बाद वो व्यक्ति सामने आते ही वो सब बातें याद हो जाती हैं, सब फाइल खुल जाती है, सारी बातें, हाँ इसने ये कहा था, इसने ऐसा बिहेव किया था, इसने ऐसा किया था, ऐसा होता नहीं होता? 20 साल तक वो बात याद भी नहीं आई, किंतु 20 साल के बाद वो बात देखते ही खुल जाती है। तो ये सब अंदर केमिकल स्टोर्ड है और वो केमिकल्स जो बने हैं वो ही हमें जलाने हैं, वो ही हमें, यही हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमको समय प्रति समय धोखा देते हैं। ब्राह्मण बनने के 10 साल बाद 20 साल बाद भी धोखा दे देते हैं, ये संस्कार हमको जलाने हैं। ये बीती बातों को फुल स्टॉप लगा, इनको करना है कि होली, बीती सो बीती करना, और इनको जलाने का तरीका क्या है? इनको जलाने का तरीका है दो तरह से, दो विधि है, एक स्थूल विधि एक सूक्ष्म विधि, और दोनों आवश्यक हैं, दोनों विधियां आवश्यक हैं, स्थूल भी आवश्यक है सूक्ष्म भी आवश्यक है। स्थूल विधि क्या है? उसको हम क्या करते हैं, जो भी दिलवाले होते हैं, वैसे भी आम जो भी होते हैं जिनको भी हमें करने, मैं भी अपने आप भी करता हूं कि एक कागज पेंसिल लेके बैठ जाते हैं और उसमें बचपन से लेकर के जब से मुझे याद है 4 वर्ष की उम्र से सारी बातें याद रहती हैं। 4 वर्ष के बाद सब बातें हमें याद रहती हैं, भूलते नहीं हैं। 2 वर्ष का हमको याद नहीं, 2 वर्ष में हम कैसे थे, क्या हुआ था हमारे साथ। 3 वर्ष का भी हमको याद नहीं है, किंतु 4 वर्ष के बाद हमें सब कुछ याद रहता है, सिर्फ पीछे जाने की बात है। तो 4 वर्ष से लेकर के और आज तक मेरे साथ क्या क्या नेगेटिव घटनाएं हुई, क्या क्या गलत मेरे साथ हुआ, क्या गलत देखा, क्या गलत सुना, क्या गलत बोला, क्या गलत खाया, क्या गलत सोचा, वो सब कुछ मेरे अंदर रिकॉर्ड है। क्या गलत किया, किन किन गलत रास्तों पर गया, किन किन से गलत संबंध संपर्क बनाया, वो सब बातें अंदर याद हैं। उनको कागज पर लिख लेना, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, एक एक वर्ष को देखते हुए लिखते चले जाओ। उनको पहले इमर्ज कर लो, नहीं तो क्या होता है कई बार हम कुछ बातों को जला देते हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, फिर वापस वो जिंदा हो जाते हैं। जो जिनको टच ही नहीं किया वो हम फिर वापस आ जाएंगे ना, हमने सोचा हमने जला दिया किंतु बहुत सारी बातें जो अंदर रह गई। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको जाकर के एक एक बात को हम लिख लें कि ये बातें हैं। मैं ये किसके लिए लिख रहा हूं, अपने लिए नहीं, बाबा के लिए लिख रहा हूं, बाबा को मुझे अर्पण करनी है, ये मेरे जीवन का विष है, ये मेरे जीवन का क्या है, ये सागर मंथन के समान है, मन रूपी सागर का मंथन करना। बचपन से क्या क्या विचार, क्या क्या भावनाएं, क्या क्या वृत्ति, क्या क्या स्मृति मेरे अंदर स्टोर है, उसको सामने लाना, ला करके लिख देना, और लिख करके फिर दृढ़ता से बाप के अर्पण कर देना कि बाबा आज के बाद ये आज मैं आपको दृढ़ता से आपको देता हूं, आज से मेरा नहीं ये आपका। उसको सच्चे दिल से समर्पण कर देना। हाँ, दोबारा से बता दो। तो ये जो भी हमने जो बताया ना, जो नेगेटिव जो बातें हैं, वो पूरी की पूरी बचपन से लेकर अभी तक किसको देना, और देने समय क्या करना, देने समय एक टेलीफोन नंबर मैं आपको देता हूं, हॉटलाइन नंबर है, शिव बाबा का हॉटलाइन नंबर। चाहिए आपको हॉटलाइन नंबर, चाहिए हॉटलाइन नंबर? चलो एक बार मेरे से रिक्वेस्ट आई है कि जो विकारों के बच्चे हैं उनका नाम दोबारा से बता दीजिए, है ना, तो उनको फिर खत्म करने से पहले एक बार दोबारा सुन लो ताकि फिर वो उनको भी खत्म कर दें, है ना। काम विकार के 2 बच्चे कौन से बताए, आलस्य और अलबेलापन। अगर आलस्य और अपनी दिनचर्या में 4 नियमों में अलबेला आलस्य किया और 4 मर्यादाओं में अलबेलापन लाया तो काम विकार पैदा हो जाता है वापिस। क्रोध के 2 बच्चे हैं, दूसरों में दोष निकालने की आदत, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनिसिज्म, सिनिकल बिहेवियर, और दूसरा है हॉस्टाइल बिहेवियर, मतलब बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल बिहेवियर, सिनिसिज्म एंड हॉस्टिलिटी। जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो दूसरों में दोष निकालता रहता है, उसकी आदत होती है दूसरों में दोष निकालने की और बदला लेने की भावना रखता है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्रोध वापिस आता रहता है, अपने आप ही आता रहता है। लोभ के 2 बच्चे हैं, शक और अनुमान। लोभी व्यक्ति बहुत शकी होता है, लोभ खाली पैसे का नहीं होता, नाम मान शान का लोभ भी होता है, चीजों का भी लोभ होता है। तो लोभी व्यक्ति बहुत शक करता है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे, मेरे बारे प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच तो नहीं रहे हैं, अनुमान बहुत लगाता है, ऐसा हो गया होगा, उसने ऐसा कर दिया होगा, कोई बात उसके हिसाब से नहीं होती तो अनुमान एज्यूम करता रहता है, एजम्पशन करता रहता है। मोह के 2 बच्चे हैं, शक और चिंता और भय। जिसको मोह होता है ना, जिससे उसके बारे में चिंता लगी रहती है, जैसे मां को मोह होता है बच्चों से, जब तक वो स्कूल से ना आए तो चिंता लगी रहेगी, भय लगा रहेगा उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ऐसा ना हो, किसी ने उसको उठा ना लिया हो, और चिंता और भय से फिर और ज्यादा मोह पैदा होता है। और फिर अहंकार के दो हैं जल्दीबाजी, मतलब मैपन, हर चीज में मैपन। अहंकारी व्यक्ति को हर चीज में मैपन होता है और जल्दीबाजी रहती है, हर चीज में जल्दी प्रेशराइज फील करता है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। और दूसरा ईर्ष्या, अहंकारी व्यक्ति को ईर्ष्या बहुत रहती है दूसरों से, कंपटीशन की भावना बहुत रहती है और उससे फिर ईगो और बढ़ती है। तो ये 5 के 10 है ना, और फिर 10 के 100 है ना, आगे फिर इनके पोतरे पड़पोतरे बहुत हैं, है ना, तो उसके में जाएंगे तो फिर तो शाम हो जाएगी पूरे उसके नाम गिनते गिनते, है ना। तो ये जो है अब इनको हमें जलाना है, ना चिंता भय, शक अनुमान, दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, जल्दीबाजी करना, है ना, इन सबको हमें ईर्ष्या आज जला देना है। कैसे जलाएं? ये जो जीवन का विष है ना हमारे, इस जीवन के विष को सदा के लिए आज होली मना देनी। कैसे होली मनाएंगे? तो परमात्मा को बुलाना पड़ेगा, परमात्मा को देना है, तो उसका हॉटलाइन नंबर है, कभी बिजी नहीं होता है, रात को 12 बजे लगाओ तो भी मिलेगा, खाली लाइन सदा खाली मिलती है। उसका नंबर है 000000। जैसे अपने अगर टेलीफोन करें ना, मोबाइल भी करें, 10 लगाएं तो कहां जाते हैं? सिटी के बाहर। 20 लगाएं तो कंट्री के बाहर, और 30 लगाएं तो विश्व के बाहर, वर्ल्ड के बाहर चले जाते हैं, है ना। तो पहली 0 क्या है? मैं आत्मा 0, है ना, मैं आत्मा बिंदु। दूसरी 0, मेरा बाप भी 0, मतलब बिंदु बट सिंधु। और तीसरी 0, अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। लाख को 0 से गुना करें तो क्या होता आंसर? 0। करोड़ को 0 से गुना करें तो आंसर? 0। तो अभी तक जो कुछ बीता, जब भी हम बाबा को याद करें तो बहुत सिंपल तरीका है, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, खाली हो गया ना, बस मैं आत्मा बिंदु और सागर मेरे साथ है, है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, और भर गए पूरे, बस एकदम क्या बन गए? लवलीन हो गए, नहीं हो गए? सागर में समा गए नहीं? कुछ भी याद नहीं आएगा, कोई भी पुरानी बात आपको याद आ नहीं सकती, 0 हो गया ना, सब कुछ 0 कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दे 0 से, कुछ भी हो, बच्चा याद आए, बच्चा मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या हो गया आंसर? आंसर क्या? पत्नी मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या? पति मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 0 आएगा ना, किसको 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 0 आता है ना। कुछ भी याद आए दुनिया का, इस पुरानी दुनिया का, सड़ी हुई दुनिया का, छिछी दुनिया का, पुरानी दुनिया का, 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 है ना। तो ऐसे जब अभी, चलो अभी अभी हम सब जलाएंगे, ठीक है, जलाएंगे सभी, तो सूक्ष्म में आप अभी 4 साल की उम्र से लेकर आज तक जो कुछ भी नेगेटिव देखा है, सुना है, बोला है, खाया है, किया है, उसको सबको इमर्ज करके एक बार सदा के लिए, चलिए 2 मिनट में हम उसको बहुत पावरफुल स्थिति में बैठेंगे और जला देंगे, है ना। बस तरीका बहुत सिंपल है, 000 नंबर डायल करो, हॉटलाइन नंबर डायल करो, चलिए मैं आत्मा 0, मेरा मीठा बाबा भी 0, और अभी तक जो कुछ बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। चलिए फील करें कि मेरे जितने भी ब्रेन में ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, स्टोर है मेमोरी में, वो सब खत्म हो रहे हैं, सब वो खत्म हो गए, ऐसा फील करें। आज के बाद, इस सेकंड के बाद, वो कभी मेरे जीवन में दोबारा ना आए, सच्चे मन से, दृढ़ता से, स्वाहा कर दो,
ओम शांति।
ये जो प्रक्रिया बार बार भी करनी चाहिए, बार बार माना दिन में कई कई, क्योंकि इसका अभ्यास जैसे क्या है, जैसे बिल्ली को आदत पड़ती है ना, एक बार जहां दूध पी के जाती है वहां बार बार आती रहती है ना। इन विकारों को, इन बातों को बार बार आने की आदत है हमारे पास, तो बार बार अभ्यास कर लो, दिन में कई बार अभ्यास कर लो। अब ये जब ये होली मना ली हमने, ये जलाने वाली, तो अब हमको मनाने वाली होली कैसे मनाएं? अब हम जो बात अब जो करेंगे चिंतन, वो करेंगे परमात्म संघ के रंग में निरंतर कैसे रंगे रहें, हर समय रंगे रहें। कभी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, जो आपको याद है मम्मा ने क्या कहा, जो करना है वो कब करो, कल करेंगे, जो करना है अब कर लो, आज कर लो, कल पर मत छोड़ो। और दादी ने क्या कहा, कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है। कब होना है, अभी होना है कि बाद में होना है, अभी होना है। दादी को तो हमने देखा, दादी कैसे एक ही लगन थी, एक ही धुन थी, कर्मातीत होना ही है, कर्मातीत होना ही है, कर्मातीत होना ही है। इतनी बिजी होते हुए बस मुझे कर्मातीत होना है, मुझे कर्मातीत होना है, सब सेंटर्स की जिम्मेवारी संभालते हुए। दादी जानकी जी को भी आप देखते हैं ना, कैसे इतनी उम्र में सारा कुछ करते, सारा कुछ संभालते, अमृत वेला, मुरली, हर चीज में कैसे नंबर वन। अभी देखो दिन रात सेवा में बिजी है ना, तो भी कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। वो ऐसी लगन, ऐसी अंदर से धुनी लगी हुई है ना, धुन लगी हुई है। और दीदी का क्या था स्लोगन, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो ये जो स्थिति बने, ये अंदर बजता बजने लगे है ना, जैसे होता है ना अंदर ट्यूनिंग बजती है ना, जैसे अंदर एक ट्यून बजती रहती है ना, वो ट्यून बजनी शुरू हो जाए, जो करना है अब कर लो, जो करना है अब कर लो, जो करना है अब कर, माना जो कर, क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, अपने को आत्मा समझ के एक ही बात करनी है, जो अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहना है। हम सबने बहुत गहराई से देख लिया, देह और देह के संबंधों में जाके देख लिया ना, देखा सभी ने, कितने भी देह के संबंध है, देह और देह के संबंध है, वहां सब क्या मिलता है बताओ, क्या मिलता है, दुख के अलावा कुछ मिलता है? अपनी देह के बारे सोच के देखो, सुख मिलेगा? देह के बारे सोचते ही लगता है, अरे यहां कमर का मणका हिल गया है, गर्दन का मणका हिल गया है, पेट में एसिड बनता है, सिर में दर्द रहता है, बाल सफेद हो गए, हार्ट की वो कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, शुगर थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, टेंशन शुरू हो गई, नहीं शुरू होती। देह के संबंधों के बारे सोच के देख लो, बच्चा है, अच्छा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, तो भी टेंशन है ना, इसका आगे ही है, इसको अगली क्लास में यहां जाने वाला है, इसके ऐसे कर, ठीक सा नहीं है, कहना नहीं मानता, तो भी टेंशन है ना? कोई भी संबंध है, पत्नी है, पति है, मां है, बाप है, बच्चा है, कोई भी संबंध, दोस्त है, टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा कुछ भी प्राप्ति नहीं। देखो एक चीज जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम कई बार बातों को दबाते हैं, दबाना नहीं बातों को, दबाने से ज्वालामुखी के भांति प्रेशर बढ़ जाता है अंदर, कोई बात दबाओ नहीं। हम इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को एक स्पेशल पावर मिली है, वो है एशिया की पावर। कौन सी पावर? एशिया, वो ह्यूमन ब्रेन में है। एशिया माना ए फॉर एनालिसिस, एनालिसिस माना विश्लेषण, कोई भी बात हो उसका विश्लेषण करो, उसकी गहराई में जाओ कि मुझे अभी इसकी, इस देह का ध्यान आ रहा है, या इस देह का, इस फला व्यक्ति का मुझे याद आ रही है, उसमें मुझे क्या मिलने वाला, क्या प्राप्ति मुझे है, नुकसान है कि फायदा है। जो बाबा ने कहा ना, त्रिकालदशी की सीट पे फिक्स होके, स्थित होके देखो, त्रिकालदशी की सीट पे बैठ जाओ कि मैं ये जो सोच रहा हूं इसका फायदा क्या, नुकसान क्या, करूं तो फायदा है या नुकसान क्या, या नुकसान है। तो देह के संबंध और देह दोनों में देख लो, अधिकतर बुद्धि कहां जाती है मनुष्यों की, या तो अपनी देह में जाती है, देह के संबंधों में जाती है। या देह के पदार्थों में जाती है या देह के स्वभाव संस्कार में जाती है। तो दबाओ नहीं, एनालाइज कर लो, फिर सिंथेसाइज करके देखो, अच्छा फिर अपने साथ जोड़ के देखो उस बात को, ये बात ऐसे हो जाए और अपने साथ जोड़ो, क्या मेरे साथ निभेगी ये बात, क्या मैं इस बात को निभा पाऊंगा, अपने साथ इंटेग्रेट, आई फॉर इंटेग्रेशन, अपने साथ इंटेग्रेट कर लो, करके देखो। मेरे साथ इंटेग्रेट हो ही नहीं सकती ये बात, तो फिर एसिमिलेशन करके देखो। तो ये चार बातें करके फिर एक्शन में आओ, तो आप देखेंगे अगर आप एशिया लगा देंगे तो कभी भी हमसे कोई विक्रम हो नहीं सकता। तो अपने आप को जब भी कोई बात, कैसी परिस्थिति आए, एशिया लगा दो, और एशिया लगाते ही बात खत्म हो जाएगी। तो तुरंत हमारे अंदर जो परमात्म दिव्य बुद्धि जागृत हो जाएगी, अपने आप जागृत हो जाएगी। यह अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा दिव्य बुद्धि सदा जागृत रहेगी, ये जो पुरानी आसुरी बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए अभी परमात्म संग के रंग में रहने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली तो है होली, होली माना पवित्र, पवित्र बुद्धि में ही परमात्म संग का रंग लग सकता है। पहले जला लिया ना, जलाते ही हम पवित्र बन गए, जलाने से ही क्या बन गए हम, ऐसे हल्का लग रहा ना, पहले से जलाने से हम हल्के हो गए, नहीं हो गए, पवित्र बन गए, बुद्धि पवित्र हो गई और सतोगुणी बुद्धि बन गई। जैसे जलाया पुराने को तो सतोगुणी में ना, आत्मा के अंदर सात गुण तो हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, वो इमर्ज हो जाती हैं बुद्धि में, और ऐसी बुद्धि में परमात्म रंग लगता है ना। तो उसको परमात्म रंग को लगाने के लिए क्या करें, बस जब भी हम चलते फिरते एक ही अटेंशन रखें, वो कविता याद है सभी को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। कवि जो कविता गाता है उसने कविता आत्मा के लिए लिखी है, वो देखता है कि छोटा सितारा सितारा चमकता है और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एक छोटा सितारा चमकता सब कुछ काम करता है, आंखें भी काम करती, नाक कान मुख भी काम करता, सारी बॉडी की हर सेल भी काम करती, और सितारा निकल जाता तो क्या होता, सब कुछ खत्म हो जाता। फिर दूसरी दो लाइन में क्या, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, दैट मीन्स बियॉन्ड द स्टार्स, बियॉन्ड द मून, बियॉन्ड द सन, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड, देर इज अनदर स्टार विच इज लाइक ए डायमंड, जो कि हीरे जैसा है, हीरा माना सात रंगों को रिफ्लेक्शन करने वाला, सात रंगों को रिफ्लेक्ट करने वाला, इन द स्काई नहीं अबाउ द स्काई। तो पहली दो लाइन में आत्मा, दूसरी दो लाइन में परमात्मा। तो ऐसा अपने आप को चलते फिरते ये स्थिति बना के रखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो व्हाट आई एम, है ना, हाउ आई वंडर नहीं, वो दुनिया वालों के लिए, नाउ आई नो व्हाट आई एम, हाँ मैं चमकता हुआ सितारा हूं, इसे सातों रंग निकल रहे हैं, सातों किरणें निकल रही हैं, सातों रश्मियां मेरे सारे अंग अंग में, एक एक रोम रोम में फैल रही है, हार्ट को मैं चला रहा हूं, कौन चला रहा है, आत्मा चला रही है, लीवर को कौन चला रहा है, मैं आत्मा चला रही हूं, फील करो कि लीवर, आत्मा से लीवर में शक्ति जा रही है, फील करो आंतों से, आंखों से, यहां से आंतों में शक्ति जा रही है, फील करो कि यहां से पैरों में शक्ति जा रही है, फील करो कि यहां से ब्रेन के एक सेल में शक्ति जा रही है, मैं आत्मा चला रही हूं और ये सातों शक्तियों से शरीर चल रहा है, और अभी वो सेल, वो कोशिकाएं तक जो शक्ति जा रही है उसके बीच में, आत्मा के बीच में और उन सेल्स के बीच में मन है, मन माना स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, इंग्लिश में शब्द है टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज। ये जो मेरी टीम थी पहले गंदी हो गई थी, गंदी माना इसमें पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, देह की वृत्ति, देह की स्मृति और पुरानी दुर्भावनाएं और पुराने संकल्प, देह के संकल्प चलते थे, अभी वो सब साफ हो गए। और मुरली से सबसे बड़ा साधन है वो उसको साफ करने का, अपनी टीम को पॉजिटिव बनाने का साधन क्या है? मुरली। मुरली जो है 100% पॉजिटिव स्मृति, पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव संकल्प है। 100% पॉजिटिव टीम कहां से मिलती है? मुरली से मिलती है ना। मुरली इसलिए कहां रखनी चाहिए? सदा कहां रखनी चाहिए? जेब में, है ना। जेब में मुरली रहती है ना तो कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है ना? जो हमारे दिल वाले हैं ना, जो दिल वाले माना जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं, वो सब के सब अपने यहां जेब में मुरली रखते हैं, इसलिए कभी हार्ट अटैक नहीं आया उनको, है ना। एक बार जो हार्ट अटैक यहां आने से पहले आया था, आया, किंतु जिन्होंने अपनी जेब में मुरली रखी उनको कभी हार्ट अटैक आया नहीं दोबारा, ना हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ा दोबारा से। जो इसमें गलती करते हैं वो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुरली अगर हमारे मन में रहे, स्मृति में, वृत्ति में, भावना में, संकल्प में, तो हमारी टीम पॉजिटिव हो गई। तो ये जो एनर्जी है, सातों एनर्जी बॉडी की हर सेल में जाती रहे, तो कोई रोग, ना तन का रोग ना मन का रोग हमको आ नहीं सकता। आएगा भी तो सूली से कांटा हो जाएगा। भले एक बात में, ये कई बार मुझे कहते हैं लोग कि हमें ब्राह्मणों को बीमारियां क्यों आती हैं, ब्राह्मणों को रोग क्यों आते हैं? आपको पता क्यों रोग आते हैं? क्यों रोग आते होंगे? जो 63 जन्मों में हमने गलत काम किए हुए हैं, विकर्म किए हुए हैं, वो माफ नहीं होते हैं। मैं इस पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजा था, बहुत कंजूस था, महाकंजूस था, और वो किसको कुछ भी जरा दान नहीं देता था। एक साधु उसके दरवाजे पे आया, उसने उससे कहा, 3-4 दिन से भूखा था, तो द्वारपाल को बोला कि राजा को कहो मैं 3-4 दिन से भूखा, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि जाके बोल दो हमारे यहां कुछ खाने को नहीं है, चलो और कहीं जाओ। साधु फिर भी खड़ा रहा। फिर साधु ने फिर दोबारा थोड़ी देर में कहा द्वारपाल को, राजा को कहो मैं भूखा हूं, मुझे खाने को दे। तो उसने फिर जाकर के कहा, तो उसने कहा नहीं नहीं खाने को नहीं है हमारे पास कुछ भी, जवान है जाके कुछ काम करे, खाने को नहीं मिलेगा। फिर भी खड़ा रहा। उसने कहा, राजा को बोलो मैं कुछ लेके ही जाऊंगा, बिना लिए नहीं जाऊंगा। तो राजा को गुस्सा आ गया, तो राजा ने कहा जाओ उसको अस्तबल से घोड़े की लीद लो और उसके कमंडल में डाल दो। तो द्वारपाल ने वही किया, घोड़े की लीद अस्तबल से लिए, उसके कमंडल में डाल दी। साधु चला गया वहां से। कुछ दिन के बाद वही साधु, वही राजा जंगल में शिकार खेलने गया अपने मंत्रियों के साथ और सैनिकों के साथ। शाम हो गई तो मंत्री बिछड़ गए, सैनिक भी बिछड़ गए। अकेला एक जानवर के पीछे दौड़ता दौड़ता, घोड़े पर दौड़ता दौड़ता, अकेला कहीं जंगल, गहरे जंगल में खो गया। अंधेरा हो गया था, बहुत प्यासा था, भूख भी लग रही थी, थक भी गया था, घोड़ा भी प्यासा था। तो उसने एक पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा कहीं आसपास कोई झोपड़ी हो, कहीं कुछ हो, या कुछ ऐसा कोई पानी हो तो मैं जाके पानी पी लूं। तो उसको एक झोपड़ी नजर आई अंधेरे में देखने पर, कि लाइट उसके अंदर जल रही थी। तो गया वो झोपड़ी के बाहर, जाके दरवाजा नॉक किया और जाकर के एक अंदर एक आदमी था, साधु था। तो उसने उसको अंदर बुलाया, उसको पानी पीने को दिया, घोड़े को भी पानी पिलाया, खाना जो भी उसके कम जो भी झोपड़ी में खाना था उसको खिलाया, खिला करके उसको अपने बिस्तर पर सुला दिया और आप नीचे सो गया उस साधु ने। अगले दिन जब वो उठा, राजा उठा, तो साधु के साथ बाहर आया झोपड़ी के साथ। झोपड़ी के बाहर एक ऐसे टीला जैसे बना हुआ था, झोपड़ी के बाहर ही ऐसे टीला होता ना, मिट्टी का एक टीला सा ऐसा बना हुआ था गोल गोल। तो उसने कहा, साधु जी ये क्या चीज है? तो साधु ने कहा, राजन, वो एक्चुअली वही साधु था जो उसके घर पे पहले भीख मांगने के लिए गया था, कि राजन तुम्हें याद है मैं कुछ साल पहले तुम्हारे पास आया था, बहुत भूखा था, 3-4 दिन से भूखा था, तुमने मेरे को लीद दी थी, मेरे कमंडल में खाने के लिए दी थी, क्योंकि तुमने मुझे भीख में दी थी, मैं उसको फेंक तो नहीं सकता था, तो मैंने अपने घर पे ला करके झोपड़ी के बाहर ला के रख दी, अब उस पर मिट्टी चढ़ चढ़ के वो इतना बड़ा हो गया। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि एक साधु के साथ मैंने ऐसा बिहेव किया। साधु के पास तो कुछ भी नहीं था, भूखा था बेचारा, तो मैंने उसको एक इतना गंदा उसके साथ बिहेव किया। और साधु ने मेरे साथ क्या किया, उसके पास गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था तो भी उसने मुझे पानी पिलाया, जो भी उसकी झोपड़ी था मुझे खाना खिलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया। तो मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया। तो राजा ने कहा, महाराज साधु जी मैंने तो आपसे बहुत बड़ा पाप किया है, उसका पश्चाताप कैसे हो? आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, किंतु मेरा उस पाप से मुझे मुक्ति दिला दो। तो उसने कहा कि साधु ने कहा राजन तो आपने मेरी बहुत बेइज्जती की थी उस दिन, मेरा बहुत अपमान किया था, तो आप भी अपना अपमान कराओ तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। कि तो जब पश्चाताप की आदमी के अंदर भावना होती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसने क्या करूं, उसने कहा जाओ अपने राजमहल में वापस जाओ और वहां जाकर के शराब पियो, और शराब पी के जो अपनी राजकुमारी के साथ हाथ पकड़ के घूमते सड़कों पर घूमो, कपड़े फटे हुए कपड़े पहन के घूमो। तो उसने ऐसा किया, लोगों ने कहा ये राजा पागल हो गया। उसने लोगों ने पत्थर मारे उसको, सब गालियां दी सबने उसको किया। राजा वापिस वो करके वापिस आया, वापिस झोपड़ी पे आया, साधु की झोपड़ी पे देखा था, क्या देखा कि माउंड था ना जो पानी मिट्टी का, वो कम हो गया था, कि लीद अभी भी पड़ी हुई थी, लीद थी ना वो अभी पड़ी हुई थी। तो उसने कहा महाराज ये तो अभी भी पड़ी हुई है इतनी, तो कहता है ये तो तुम्हें खानी पड़ेगी। तो जो हमारा जो राजयोग से जो हमारा विक्रम विनाश होता है ना, राजयोग से हमारा, अब देखिए अगर आपने किसी से आज से 200 साल पहले 500 रुपए उधार लिए तो कितने हो गए होंगे आज? आज से 200 साल पहले किसी से आपने 500 रुपए उधार लिए थे तो आज 200 साल के बाद कितने हो गए वो? एक करोड़ हो गए होंगे। आप गिनो ना, एक करोड़ से भी ज्यादा हो गए होंगे। इंटरेस्ट लगाओ ना 200 साल का तो कितना हो गया, एक करोड़ से भी अधिक हो गया। और वो व्यक्ति आज आपसे आकर कहे मुझे एक करोड़ मेरे वापिस करो, तो आप दे सकते हैं? एक करोड़ दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो राजयोग से क्या होता है, 99,00,000 माफ हो जाते हैं। 500 रुपए तो देने ही पड़ते हैं आपको, 500 रुपए देने तो सहज है, नहीं सहज है? 99,00,000 माफ हो गए राजयोग से। कितने देने पड़ेंगे? मूलधन देना पड़ता है। मूलधन तो दे सकते हैं ना, तो शरीर की बीमारी के हिसाब से देना पड़ता है। सूली, 1 करोड़ सूली है, 500 रुपए कांटा है। तो राजयोग की शक्ति से जब आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, जो हमारे मन में उस समय के जो श्राप, उस समय की जो बातें रिस्टोर हो जाती हैं, वही हमारे अंदर वो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में वो एनर्जी, वो शक्ति जो बॉडी के अंगों तक जानी चाहिए वो नहीं पहुंचती है। किसी के दिल को दुखाया तो दिल में बीमारी, किसी के पेट पे लात मारी तो पेट में बीमारी, किसी के सांस पे रोका तो सांस की बीमारी, किसी के दिमाग में रोका दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग में कुछ रोग हो जाएगा, ठीक, कमर में तंग किया तो कमर में बीमारी, ठीक है, जिसके जो भी हमने पाप किए हैं उसी अंग में वो एनर्जी बहनी बंद कर देती है। तो इस तरह से वो हमें रोग के रूप में पैदा होती है। किंतु परमात्म शक्ति, परमात्म संग के रंग में रंग जाना, और फिर वो हमें क्या करती है, वो जितना हमारा मूलधन 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो हमको देना था, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप हो जाता है उसका भी, वो हमारा सहज कट जाता है। तो परमात्म संग के रंग में रंगने के लिए हमको अपने, कई बार क्या होता है ब्राह्मणों को एक धोखा हो जाता है, कोई बीमारी आते हैं तो कहते बाबा मैं आपका बना तो भी बीमार हूं क्या, तो भी हार्ट अटैक आ गया क्या, तो भी मेरे को कमर में दर्द होता है, तो भी सिर में दर्द होता है। अरे तुमने कितने लोगों को सिर में दर्द किया, तुम वो हिसाब किताब बाबा कैसे माफ करेगा, उसका ब्याज तो माफ करेगा, है ना? किंतु वो तुम परमात्म याद में रहोगे, बाप के संग में रंगे रहोगे, बुद्धि को पवित्र रखोगे, सातों गुणों के अपने सारा दिन सिमरण करते रहेंगे, मुरली का सिमरण करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो सूली भी कांटा हो जाएगी और कांटा भी रुई हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रह करके ये बार बार पुराने संस्कार स्वभाव को जलाते रहना, होली बन करके रहना, जो नियम है उन पे नियम और मर्यादाओं के अंदर चलना, और परमात्म संघ के रंग में रंगे रहना। और रंगने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल, क्या करना, चाहे जलाना हो चाहे मनाना हो, क्या करना, हॉटलाइन नंबर याद रखना, ठीक है, क्या नंबर याद रखना, इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता है, कोई 500 रुपए का बिल नहीं आएगा आपका, ठीक है, बिल भी जीरो आता है, ठीक है ना। और प्राप्ति कितनी होती है, एक के आगे जितनी मर्जी जीरो लगाते जाओ, जितनी बार हॉटलाइन नंबर लगाओगे उतनी जीरो लगती जाएंगे। तो परमात्म संघ के रंग में, चलो अभी हम वो अभ्यास करेंगे, अगले 5-6 मिनट ये अभ्यास करेंगे कि परमात्म संघ के रंग में कैसे रंगे हम महसूस हो, कैसा रंग हमें लगे। और उसके बाद एक गीत बजाना लास्ट में, झूम रहा मेरा मन होके मगन, ना फिर सब उस पे गीत पे सब बाद में खड़े होकर डांस करेंगे, ठीक है, होली मनानी ना, तो पहले हम 5-6 मिनट परमात्म संघ के रंग में रंगना, कैसे रंगना है, पहले ज्ञान का सागर है ना, बाबा को ऊपर नहीं, परम धाम में नहीं, बाबा को नीचे बुला लेते है ना, ऊपर ही अपने ऊपर ही बुला लेते, ठीक है, यहां पर ही बुला लेते हैं ना। तो परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर, अपनी बुद्धि को उसमें लगाएंगे और बुद्धि रूपी तार से वो ज्ञान के सागर की, ज्ञान की लहरें हमारे अंदर आई, ज्ञान माना ABCD, मैं आत्मा, बाबा मेरा पिता, परमात्मा की संतान, सी फॉर कनेक्शन, मेरा संबंध सर्व संबंध उसके साथ, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। पहले तो ये ज्ञान का सागर मेरे एक एक, अब पहले पहले बुद्धि में, बुद्धि से आत्मा में, आत्मा से मन से होता हुआ ब्रेन के एक सेल में, है ना, स्टोर हो गया, ABCD स्टोर हो गया, मैं आत्मा हूं ये स्टोर हो जाए दिमाग के एक सेल में, परमात्मा की संतान हूं ये अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। अभी नई मेमोरी स्टोर करनी है, पुरानी स्टोरी, पुराने जला दिया ना, पुराना जला दिया वो हाथ उठाओ, जिन्होंने पुराना जलाया हाथ उठाओ, जिन्होंने पुराना जला दिया हाथ उठाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी नई मेमोरी, नई बात स्टोर करनी है, नए संस्कार इमर्ज करने हैं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की, परमात्मा की संतान हूं, मेरा सर्व संबंध उसके साथ है, वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरा साजन है, वही मेरा सर्जन है, मेरा डॉक्टर भी वही है, कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, है ना। और फिर डी फॉर ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। तो ये एक एक सेल में, ब्रेन के एक सेल में स्टोर हो रहा है, और वो फिर वहां से मैसेज सारी ब्रेन बॉडी की सेल्स में जा रहा है, एक एक बॉडी की सेल में ये मैसेज जा रहा है, और फिर यहां से ये सागर के रूप में, सागर है ना, सागर यहां से आया और स्मृति वृत्ति भावना संकल्पों से होता हुआ सारे दिमाग की सेल्स में, बॉडी की कोशिका में होता हुआ रोम रोम से बाहर निकल गया, और बाहर मेरे आसपास ज्ञान का सागर ही सागर इकट्ठा हो गया, ठीक है, और खूब प्रेशर से जैसे आ रहा है, बहुत तेजी से फ्लश हो रहा है सारा कुछ, पुराना सब कुछ फ्लश होकर नया नया सब रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैं ज्ञान के सागर में समा गया। इस फीलिंग में चले जाओ, अभी चले जाओ, अंदर बजने लगे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वही मेरी मां है, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे शिक्षक हैं, वही मेरे सतगुरु हैं, बंधु हैं, सखा हैं, साजन हैं और सर्जन हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। फील करें कि मेरे ये मेमोरी मेरी ब्रेन की हर सेल में स्टोर होती जा रही है, और ब्रेन से हर कोशिका में ये मैसेज जा रहा है, और मेरे रोम रोम से ज्ञान का सागर जैसे बहता जा रहा है, और मैं अभी ज्ञान के सागर में समा गई हूं, इस फीलिंग में रहे। फिर पवित्रता का सागर शिव बाबा से मुझ आत्मा में पवित्रता की लहरें मुझ आत्मा पर उतर रही हैं, और मुझ आत्मा से शरीर के एक एक रोम में, एक एक कोशिका में समाते जा रहे हैं, फिर शरीर के रोम रोम से पवित्रता बह करके मेरे चारों तरफ पवित्रता का सागर ही सागर, ऐसा फील करें। ऐसे ही फिर शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर और सर्व शक्तियों की अनुभूति में अपने आप को समा दें, अपने आप को महसूस करें कि मैं आत्मा परमात्म गोद में हूं, परमात्मा की बाहों में समाई हूं। फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति करें। बाप दादा सात रंगों के हीरे का पाउडर मुझ पर डाल रहे हैं, फील करें। फरिश्ता फरिश्ता की चमकीली ड्रेस पर अब सात रंगों के हीरे किस प्रकार चमक रहे हैं, चारों तरफ लाइट का ताज, मस्तक के बीच चमकती बिंदी, दो नयन जैसे लाइट के बल्ब और फरिश्ता की ड्रेस, चमकीली ड्रेस। ओम शांति। ऐसे सारा दिन में बार 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 अपने आप को यह अभ्यास इतना करेंगे उतना हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। चलो अभी हम अभी एक गीत बजेगा, झूम रहा मेरा मन है एक गीते वाला, पहले वो गीत बजाओ और फिर उसके बाद एक होली का गीत बजाना, ठीक है? अभी अभी एक मिनट फिर बाबा को याद कर लो, वो गीत बजे और फिर सभी डांस करना है, खड़े होकर डांस करना। अभी पहले एक मिनट गीत बजेगा और पहले वो उसमें आप योग करना, फिर खड़े होकर डांस करना है सभी।
कभी रूठे न।
प्यार के मोतियों से भर गए नयन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। झूम रहा मेरा मन, मेरा मन झूम रहा मेरा मन, मेरा मन।
जग के जो पालक हैं उनके हम बालक हैं, तब ही तो सारे खजानों के मालिक हैं।
जग के जो पालक हैं उनके हम बालक हैं, तब ही तो सारे खजानों के मालिक हैं।
अब अपनी धरती है अपना गगन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन।
झूम रहा मेरा मन, मेरा मन झूम रहा मेरा मन, मेरा मन
झूम रहा मेरा मन होके मगन,
झूम रहा मेरा मन होके मगन,
वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन।
झूम रहा मेरा मन, मेरा मन झूम रहा मेरा मन, मेरा मन झूम रहा मेरा मन।
ओ ज्ञान पिचकारी चलाए,
ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए।
Oh, I'm killing the holy, I'm at my shaking.